वापस निकले ही था।
असल में सुना है वो तो दिस इज हाउ प्रभुपाद शोड दैट डीटीज दे आर प्रतिमा नहे तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्रनंद दे आर नॉट डीटीज दे आर नॉट स्टेच्यू दे आर द पर्सनिफाइड पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड साक्षात। तो डीटी रेसिप्रोकेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन हम कैसे डीटीज को वो करते हैं सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारा आंखों के सामने ही एक तरह से है ना, हम लोग देख रहे हैं अभी जो भगवान की जैसे राधा रमन जी हैं कैसे मैनिफेस्ट हो गए कैसे हु हैज द पावर टू मेक डीटीज मैनिफेस्ट देमसेल्व्स, किसके पास पावर है। सो ओनली द पावर ऑफ डिवोशन, इतना भी हार्ट में कितना डिवोशन है उससे ही होता है। सिमिलरली डीटीज क्राई डीटीज शेड टियर, आपको पता मैं आजकल क्या इंसिडेंट। सो इट्स अ फैक्ट, प्रभुपाद जो कहते हैं ना इट्स अ फैक्ट, दिस इज नॉट इमेजिनेशन, दिस इज नॉट समथिंग इम्पोजिशन, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ग्रेट साइंस टू लर्न दिस साइंस। एंड ये कितना भी बड़ा भी नॉलेजेबल पर्सन हो समझ नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो है डिवोशनल साइंस है, वो सिर्फ डिवोटी ही समझ सकते हैं, सिर्फ डिवोटी ही समझ सकते हैं। तो आज मैं सोच रहा था आने के लिए कि क्या क्लास होगा नहीं होगा, एंड करें या ना करें, क्लास को कैंसिल कर दें, पर मैं सोचा जो भी डिवोटीज आए होंगे है ना कि क्लास कंटिन्यू करना ही बेटर है हमेशा। तो हर एक लेवल पे दो दो तीन तीन भी डिवोटी आए हैं तो इट्स ओके है ना, स्टिल सम कोर्स डिस्कोर्सेस शुड नॉट बी स्टॉप्ड, हरी कथा चलना चाहिए, प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, सारे चीज होते रहते हैं लाइफ में। पर ये ही हमारे लिए सर्विस है कि हम मैनेज करें कि कभी हो सकता है कोई डिवोटी एब्सेंट हो कोई, लेकिन हम लोग अगर मिलके उसको कंटिन्यू करें वही कि हो सकता है ऐसे कोई डिवोटी आज ही आए जो, और आज के दिन में ही हो सकता है उनके लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। सो वी शुड कैरी ऑन कंटिन्यू। तो अभी तो हमारा मैन पावर कम है, डिवोटीज कम है, पर आगे जाके ऐसे होना चाहिए, करना है हमें कि सारे एक्टिविटी चलते रहना चाहिए साथ साथ, किसी के लिए कोई वेट नहीं करना चाहिए। तो आई थैंक ऑल ऑफ यू कि मेरे एब्सेंस में आप लोग ने काफी कुछ किया है ना, रीडिंग असाइनमेंट्स पिछले बार मैं था आ नहीं पाया था, दो तीन हफ्ते से नहीं आ पा रहा हूँ, पर टेस्ट वगैरह दिया आप लोगों ने क्या, टेस्ट हुआ था
लेकिन
किसने दिया नहीं टेस्ट है या
कुछ एक आठ ड्यूटीज ने दिए,
आपने दिया
मैंने
आपने दिया तो टेस्ट तो ज्यादातर इजी था होगा, रीडिंग असाइनमेंट से ही रहा हो ज्यादातर, पर उसको देना भागवतम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग करिए, ऑफ कोर्स इसे चैलेंज बिग चैलेंज, इतने सर्विस के बाद इतना कुछ, पर क्या करें, करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। और थैंक्स आप लोगों को, आप लोग लेवल 2-3 का एकदम बना रहे थे आप लोग, रीडिंग असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर्स तो वो एकदम से आए आप लोगों के ऊपर और आप लोग कर रहे थे, सो इट वॉज वेरी नाइस। बाकी डिवोटीज को मिल रहा था तो दे वर डूइंग इट, तो थैंक यू सो मच। एफर्ट तो लगता ही है, बिना एफर्ट से तो होता नहीं है कोई भी चीज, और हम देख सकते हैं इसी चीज को ही अभी भी एक डिवोटी गुरु वंदना माता जी पूछ रहे थे, मतलब कि बेस के क्या प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम है आप बताइए, है ना, कुछ न्यूज लेटर में छापना है। तो उन्होंने बोला अभी तो सही है नहीं, अभी ठीक से जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। बोले नहीं नहीं फिर भी आप दे दो छापना है, तो इस बार शायद छपा है जस्ट थिंकिंग, मतलब मैंने तो दे दिया, पर एक्चुअली उसको रियली सही ढंग से करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। और मतलब अगर ये डिवोटीज के लिए हेल्पफुल होने के लिए है ना, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसको इसमें और जोर देना चाहिए, है ना, इसको और अच्छा बनाना चाहिए और अच्छे अच्छे डिवोटीज इस सर्विस में भाग लेना चाहिए, ताकि जो क्वालिटी हो क्वेश्चंस के और है ना एक एक चीज का जो है फिलोसॉफिकल, वो जो डिवोटी को चाहिए है ना सारे जो देखो बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं भक्ति में, पर जो लोग ले रहे हैं वी शुड बी एबल टू सर्व देम नाइसली। हमें ज्यादा डिवोटीज की जरूरत नहीं, मतलब ज्यादा सिर्फ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी आ रहे हैं इफ वी कैन सर्व देम नाइसली देट इटसेल्फ विल बी सफिशिएंट। ऑलरेडी बहुत डिवोटीज आ रहे हैं अभी, पर अभी हमारा क्या पता चलता है, मतलब इनेबिलिटी, हम लोग का पास इतना टाइम नहीं है कि हम जिसको जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको उतना अच्छा से कर पाए, तो ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर, तो हम प्रयास जारी रखते हैं है ना, पर नहीं करते, डिस्करेज नहीं होते हैं कि कोई नहीं है ना, अभी कोई नहीं है तो है ना, नहीं अगर सीनियर डिवोटी नहीं है जैसे मतलब मैं नहीं था या और डिवोटीज कहीं बिजी हो गए हैं, वी शुड नॉट गिव अप है ना, जब तक है हमारे पास तब तक, तब तक करते करते देखेंगे कोई ना कोई और हेल्प आ जाएगा, भगवान आप भेज देंगे है ना, जब देखेंगे रियली हेल्प इज रिक्वायर्ड तो कोई ना कोई हेल्प आ जाएगा। ये तो हमें समझ ही गए होंगे आप लोग, हम लोग अभी है ना कृष्ण भक्ति में, कि जब रियली रिक्वायर्ड है कुछ चीज रुकेगा नहीं, और जब अगर हम सिंसियर मोटिवेशन के साथ करेंगे तो जब हेल्प रिक्वायर्ड होगा आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अभी हम भागवतम थोड़ा पढ़ते हैं। पिछले वीक में कुछ हुआ था यहाँ पे पिछले वीक
रीडिंग
हुए थे, तो आप लोगों ने उसमें मेन टॉपिक ये था क्रिएशन के ऊपर है ना, मटेरियल यूनिवर्स क्रिएशन का, तो थोड़ा बहुत समझ में आया था, थोड़ा सा उसका एक बार ओवरव्यू हम दे देते हैं है? तो उसमें सेकंड कैंटो में था मोस्टली, तो सेकंड कैंटो में ये सब था भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म और फिर कैसे क्रिएशन होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है और ये भी मतलब जितना ज्यादा आप करोगे उतना समझ पाओगे, कुछ कुछ चीज हमें समझ में नहीं आएगा अभी, बहुत सारी चीज हो सकता है हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो टीनी ब्रेन है, छोटा सा ब्रेन है, हम कितना समझ पाते हैं है ना, और कभी कभी आप देखोगे कि हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टिंग भी हो रही है ना, यहाँ पे शास्त्र में जो लिखा हुआ है और साइंस की जो चीज है आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है ना, और जब भी ऐसा होता है तो हमें क्या होता है कि शास्त्र पे डाउट होने लग पाए है ना, कि ये ऐसे ही होगा स्टोरी होगा ये है ना,
लेकिन मतलब ज्यादातर शास्त्रों में ही आपस में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है,
हाँ ऐसा होता
है, थोड़ा सा और भी डाउट होता है कि मतलब कौन सा सही है
कौन सा सही है ना, तो
कई बार ये होगा कि सामने वाला ठीक कह रहा है,
हाँ तो माइंड में ये फैक्ट है, और इसके लिए हमें डीप स्टडी जरूरी है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है जो हमारा इस आंखों से समझ नहीं सकते हैं, ये जैसे टेनी ब्रेन है, और हम किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स के बारे में है, तो कहाँ तक है, कुछ मापने का कुछ है ही नहीं ऐसे है ना, तो नॉर्मल हमारा जो टेंडेंसी होता है जहां पर भी कंट्रडिक्शन आती है कॉन्फ्लिक्ट आता है साइंस और शास्त्र के बीच में, तो हमें लगता है शास्त्र गलत है ये इमेजिनरी है ये सही है, पर उल्टा क्यों नहीं होता है, हमारे माइंड में उल्टा क्यों नहीं आता है कि नहीं शास्त्र सही है ये साइंस गड़बड़ है ना, ये आता ही नहीं है हमारा ब्रेन में अरे है ना, तो दैट मीन्स कि हम जो है हमारा अभी उतना फेथ नहीं है शास्त्र के ऊपर, हमारा उतना फेथ नहीं है जितना आचार्य का होता है प्रभुपाद का और भी है ना, पर ये जो है ये एक बहुत एसेंशियल चीज है कि शास्त्र के ऊपर फेथ होना, हरिनाम के ऊपर फेथ होना, शास्त्र के ऊपर फेथ होना, और गुरु के ऊपर फेथ होना, ये तीन चीज जो है ये एसेंशियल है, इसके बिना हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं जा सकते,
है ना।
पर हमारा जड़ विद्या इतना ज्यादा है कि हम जड़ विद्या हमें शास्त्र में फेथ लाने देता ही नहीं है। तो कहीं जगह पे तो मिलता है, शास्त्र में जो बोलता है और साइंस जो बोलते हैं मिलता है, तो हम सेटिस्फाइड। हाँ, और जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वहां पे है, किसी ने प्रभुपाद से पूछा था कुछ इस तरह से, तो प्रभुपाद ने कहा कि इट डिपेंड्स हुज अथॉरिटी यू वांट टू एक्सेप्ट। आप कृष्ण की अथॉरिटी यू वांट टू एक्सेप्ट और ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग who is full of four defects, his authority you are going to accept. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा चीज है जो ना तो साइंस में भी प्रूफ हो सकता है और ना इससे भी प्रूफ हो सकता है, इस मेटेरियल आंखों से हम नहीं कर सकते, तो देट इज बियॉन्ड आवर लिमिट्स। तो वहां पे द डिवोटीज दे ऑलवेज टेक कृष्णा'स अथॉरिटी बिकॉज दिस इज ऑलवेज प्रूवन। ऑल द ग्रेट ग्रेट आचार्यस तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑल द ग्रेट आचार्यस विशाल चक्रवर्ती ठाकुर गोस्वामी सनातन गोस्वामी और दे हैव एक्सेप्टेड इट। सो ए डिवोटी एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ, है ना, तत्वदर्शी। इट्स नॉट ए स्मॉल फ्रॉग फिलोसॉफी, फ्रॉग इट्स अबाउट होल यूनिवर्सल जाइगेंटिक यूनिवर्स। और उसके लिए जितना समय हमने लगाया मेटेरियल साइंस को समझने के लिए, स्टडी करने उतना समय हमने लगाया ही नहीं, है ना। कितना साल से हम पढ़ रहे हैं मेटेरियल साइंस, है ना, ठीक है ना। तो उसके बाद भी अभी तक वो ओरिजिन ऑफ लाइफ समझ में नहीं आता है, है ना। तो कुछ कुछ चीज हमें सेटिस्फेक्शन देता है, कुछ कुछ चीजें है ना, अर्थ इज राउंड एंड ऑल दिस स्टफ, है ना, पर इट डजंट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, ठीक है। सो हमें उसको करना चाहिए कि हमें कृष्ण की अथॉरिटी और शास्त्र की अथॉरिटी, तो वी हैव टू डेवलप। अगर हमारे अंदर डाउट्स आ रहा है वी हैव टू स्टडी मोर, जिसे आपने बताया कंट्रडिक्शंस आते हैं शास्त्र में, आपस में एक दूसरे से कंट्रडिक्शंस होते हैं। तो जैसे साइंस में भी होते हैं, कई बोलते हैं मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट, फिर बोलते हैं कोई पर एटम इज द स्मॉलेस्ट, फिर बोलते हैं कोई, वो भी आपस में कंट्रडिक्शन होते हैं। पर जब आप डीप में जाते हैं स्टडी में तब जाके चीज को क्लियर होती है। उसी तरह शास्त्र में भी कंट्रडिक्शंस होते हैं, आपको लगता है अपेरेंट कंट्रडिक्शंस, पर जब हम डीप स्टडी में जाते हैं तो वो स्टडी, डीप स्टडी इसलिए हमें जरूरी है कि हमारे डाउट्स को क्लियर करना है पहले, कि हम शास्त्र को फुल्ली एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट डाउट। डाउट रहना ही मतलब हमारे भक्ति के लिए खतरनाक है। तो विदाउट डाउट अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, और फिर जो प्रीच करोगे आप जिनको भी उनकी डाउट्स को क्लियर करना, इसलिए स्टडी इज रिक्वायर्ड और लॉजिकली रेशनल प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हमें एजुकेशन सीएससी को काफी मेहनत करनी। तो मेरे को तो यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी है ना शास्त्र में होकर, तो आप इसको और इस सर्विस को और अच्छा से करो।
जैसे कि उस समय से मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था, इसलिए कि मैं
पिछले ऐसे अभी तक जितने सेशन हुए हैं L1 के तो उसमें चार से पांच ज्यादा लक्ष्य मैंने दिए हैं वहाँ पे।
ओके, हाँ।
तो मैं पिछले बार मेरी तैयारी नहीं हुई थी एक दो बार, पर मैंने इस बार काफी तैयारी करी, उससे पहले भी तैयारी करी पर इस बार मैंने काफी तैयारी करी थी। मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाए, क्वेश्चंस बनाए, हेजिटेशन के आंसर लेके सब कुछ लेगा। और तैयारी करने के बाद जब मैं बोलना शुरू किया सब निल हो गया, एकदम निल हो गया। मैं शॉक्ड रह गया, आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड आफ्टर लेक्चर, क्यों नहीं ये क्या हुआ, मतलब पहले तैयारी भी की सब कुछ किया और फिर वही चीज रिपीट हो रही थी जो मैं पिछली बार लेक्चर से बोल रहा था। फिर मैं समावधर टाइम को मैनेज करके वो समय निकालना पड़ा कैसे करके, फिर मैंने फिर गौर पूर्णिमा के बारे में बोलने लग गया इधर से, मैनेज करना था समय, तो मैं पूरा समझ नहीं पाया कि तैयारी भी की सब कुछ किया, कहाँ कमी कहाँ रह रही है कि नहीं बोल पा रहे, बोल ही नहीं पा रहा।
ये भी एक चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक, जैसे आपका एक बार आपका साथ हुआ है ना, और उस लेक्चर में सबसे ज्यादा सफर आपने किया है।
पसीना आ गया था
सबसे ज्यादा सफरिंग आपका ही हुआ है,
क्योंकि मैं सोच रहा था मैं सर्व करूंगा अच्छे से, मैंने कोशिश भी की उसके, बट एट लास्ट आई फेल।
हाँ, तो आप दोबारा उस सफरिंग नहीं करना चाहोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सफरिंग जो है इट्स सो मच एम्बेरेसिंग, सो मच है ना सफरिंग, कि ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी, और वो आप समझ सकते हो कि इट्स जस्ट कॉन्शियसनेस की वजह से, हमारे उस समय जो कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस था नहीं, समहाउ डिस्ट्रक्ट हो गया, वो मेटेरियल कॉन्शियसनेस आ गया समहाउ अदर, कॉन्शियसनेस कंटेमिनेट हो गया, एंड देयरफॉर हम जो भी दे रहे थे मेटेरियल वे से देने का कोशिश कर रहे थे। तो एक जो स्पिरिचुअल फ्लो जो चलता है ना, कि एक के बाद एक कैसे एक्सप्लेन करते चले जाना है, एक के बाद एक पॉइंट फ्लो होना है माइंड में आते रहना है ना, वो नहीं हो रहा था, बिकॉज मेटेरियल कॉन्शियसनेस आ गया समहाउ, और कृष्णस मर्सी नहीं था ही नहीं उसमें, और वो चीज जो है ये किसी भी कारण से हो सकता है, कृष्ण की मर्सी जो है चला जाता है, तो उसलिए सारे जो स्पीकर है वो उसको बहुत अच्छा से जानता है कि मेरा अपनी एबिलिटीज ही सफिशियंट नहीं है, एंड आई नीड टू बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णस मर्सी, और इसलिए वो बहुत हम्बल वे से सबमिसिव वे से कृष्णस के मर्सी के ऊपर डिपेंडेंट होके देना शुरू करता है, एंड ही ऑलवेज ट्राइड टू फील हिमसेल्फ कनेक्टेड टू कृष्णा ऑल द टाइम, कि अगर कृष्णा से आएगा तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है मेरी तैयारी है, बट वो तैयारी भी ऐसे भी हो सकता है आप पूरा तैयारी बता भी रहे हो अच्छा से, पर उस कॉन्शियसनेस अगर भी अंदर अंडरलाइन जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं है, चाहे आप हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, पर इट विल नॉट सेटिस्फाई द ऑडियंस, इट विल बिकम एज ए ड्राई थ्योरी, देयर विल बी नो कॉन्शियसनेस फ्लोइंग फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस, जैसे हम बता देना स्पीकर जो कॉन्शियसनेस फिर माउथ से निकलता है और ऑडियंस की कानों से अंदर हृदय में जाता है, वो नहीं होगी, और उससे फिर ना तो आप हो सकता है बोल रहे हो लेकिन आपको पूरा बोलने का, कल तो जैसे ऐसा हो कि आपके माइंड में आ ही नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है आपको आप सारे बता भी रहे हो, सारे पॉइंट्स बता रहे हो, पर वो थ्योरिटिकल हो रहा है और उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और ना तो ऑडियंस को कुछ सेटिस्फेक्शन, ये होता है, और इट इज ओनली स्पिरिचुअल थिंग, मटेरियल वे से ये इसको नहीं समझ सकते, ये सिर्फ कृष्णस मर्सी नहीं है, मतलब मर्सी नहीं उस समय होता है, हमारे कॉन्शियसनेस कोई भी कारण से कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाए, अगर कॉन्टेमिनेट हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो अंदर जो है हम जो है एक काइंड ऑफ हमारा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाता है, एंड वी बिकम काइंड ऑफ सम हम पैशन और कुछ ना कुछ चीज आके उसको कॉन्टेमिनेट कर देता है, एंड प्योर कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, और इसलिए हम जो भी बताएंगे दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और ऑन द अदर हैंड अगर हो सकता है हमारा सम और अदर प्रिपेयर नहीं कर पाए या कुछ, पर हम बहुत ही ज्यादा कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है एंड फीलिंग हेल्पलेस आवर सेल्फ एंड fully feeling connected to Krishna and Krishna's mercy, हो सकता है आपको कमी बता रहे हो, पर जो भी बता रहे हो वो बहुत ही pure way से जाना है, तो we have to practice that thing. कि हमारा कॉन्शियसनेस, इसलिए जनरली लेक्चर से पहले हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं लोगों से। आइडियली तो यही है कि स्पीकर जनरली बात से पहले, मतलब लेक्चर से पहले, जैसे आते हैं ना लोग बहुत सारे आके इंट्रोड्यूस कराते हैं ये है, जनरली बोलते हैं कि बात में, बिकॉज कोई भी चीज़ जो है माइंड को हमें डिवीट कर सकता है ना, कुछ भी मटेरियल पॉइंट आ सकता है माइंड में, जो हमारा जो कनेक्शन है, जो कि आप समझ रहे हो ना, मूड जो है कि हम पूरा कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो कृष्ण मर्सी जो है, जो मैसेज है, उसको एज इट इज हमें प्रेजेंट करना है, बीइंग ए कम्प्लीटली सरेंडर्ड और यू नो डिपेंडेंट हम्बल सर्वेंट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट। तो ये जो कॉन्शियसनेस जो हम मेंटेन रखना, वो कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम इधर उधर की चीज आ जाता है, कुछ मैनेजमेंट की, कुछ इधर की, कोई आके कुछ फालतू की मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले पहले ही, कुछ और चीज, कोई झगड़ा हो गया, मान लो आप उस क्लास से पहले आपको किसी डिवोटी से आपका ऑफेंस हो गया, मान लो किसी डिवोटी ने आपको कुछ बोला, आपने कुछ उसको बोल दिया, हाँ लड़ाई होगी, हाथापाई होगी, आप आके दे सकते हो उस कॉन्शियसनेस में लेक्चर? नहीं होना, वो आपका माइंड को बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा कि मैंने क्यों बोला, कैसे बोला, ये क्या है, वो क्या। तो वो जो कॉन्शियसनेस आपको कोई भी चीज आसपास में डिस्टर्ब करता है, और इसलिए हमें स्पेशली जो हम लोग जो न्यू डिवोटीज जो लेक्चर, हम लोग तो इतना एक्सपीरियंस नहीं, महाराज लोग तो ठीक है, वो कितना भी कुछ मैनेजमेंट कर कर तुरंत बैठ के वो, क्योंकि दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्ण, तो उनको दिक्कत नहीं होती, पर हम लोगों के लिए थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, कॉन्शियसनेस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए लेक्चर से पहले हम इतना दौड़ा भागी ना ही करें, और ट्राई टू कीप आवरसेल्फ इन कनेक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट
भी होता है कि जैसे बीच में कोई ऑडियंस में से कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तब भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं,
डिस्ट्रैक्ट होते हैं
बहुत ज्यादा, मतलब जो पॉइंट बोलना चाह रहे थे आधी चीज हम बता ही नहीं पाते,
फिर आपका माइंड उसी में चला जाता है। तो बेस्ट इसीलिए होता है कि आप कोई भी बोलने चाहे, आप सुनो ही नहीं, बोल उनको बोलने ही मत दो, आप बोलो कि एंड में हम डिस्कस
करेंगे। एक एक ऐसे मूड एक ये होता है कि जैसे कि मैं ना अच्छा प्रिपेयर करूंगा, मैं जो बहुत अच्छा लेक्चर दूंगा,
ये तो मेटेरियल कॉन्शियसनेस है, गलत कॉन्शियसनेस
गलत है ना प्रभु जी, इसके लिए फिर मैं यहाँ से लेक्चर सुन रहा हूँ, एक वहां से सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छा बोलूंगा, बहुत अच्छा कोशिश करूंगा देने के लिए,
वो अच्छा है, पर वो चीज को आप स्पिरिचुअलाइज रखो हमेशा कि मैं अच्छा दूंगा, मुझे अच्छा देना है, इट्स रिक्वायर्ड, पर हर एक चीज को कैसे स्पिरिचुअलाइज करना है, पर साथ में ये चीज ऐड कर दो कि मैंने तो तैयारी किया लेकिन कृष्ण स्मरण से बिना नहीं हो पाया। सो कृष्ण मैं आपकी प्लेजर के लिए, प्रभुपाद के प्लेजर के लिए, ताकि डिवोटीज को अच्छा लगे, इसलिए मैं बेस्ट, मेरे को दिया गया है, इसलिए मैं बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ, तो प्लीज हेल्प मी टू डू। तो कीपिंग आवरसेल्फ इन ए हम्बल स्टेट, बेस्ट करूंगा ठीक है, पर ऑलवेज हम्बल स्टेट में रखना है अपने आप को। आप समझ रहे हो ना, जस्ट कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, लेकिन उसी चीज को अगर मैंने तो अभी तो बेस्ट कर लिया, आज तो बढ़िया ही होगा और सब अच्छा ही होगा, तो वो क्या है, मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी आ गया है ना, तो हम कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, कृष्णा मर्सी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कम हो रहा है, तो दिस इज नॉट गुड।
और एक प्रभु जी एक ये डिस्ट्रैक्शन ये भी आता है कि जैसे हम बार बार लेक्चर सुनते हैं, मैं अगर तो मेरे अपने पास में एक टेप रखता हूँ, जैसे मैंने हर समय उसे चलता रहता है, वो पूरे समय उसमें लेक्चर चलते रहते हैं, तो मैं अगर तो ये पॉइंट अच्छा है, अब मेरे दिमाग में क्या गया लेक्चर देना है, तो ये पॉइंट अच्छा है, मैं इसको पकड़ाऊ बोलूंगा, यानी मैं उसको रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरी कॉन्शियसनेस ऐसी होगी कि अच्छा ये मैं लेक्चर में बोल सकता हूँ,
नहीं वो सब ठीक है आप करो, पर आफ्टर ऑल सारे लेक्चर्स जब आप सुन लिया, कुछ समय अपना रखो कि आप खुद भी एक अपना प्रिपेयर करना है, कि इस चीज को मैंने सब कुछ सुन के अपने ढंग से प्रेजेंट करना है। आप समझ रहे हो चीज को, क्योंकि मैंने हो सकता है कुछ पॉइंट्स इसमें उठाए, कुछ पॉइंट्स इसमें उठाए, लेकिन सारे हो सकता है रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा अपना एक फ्लेवर होना चाहिए, कि मेरा जो स्टैंडर्ड है, मेरा जो वे ऑफ स्पीकिंग है, उसी वे ऑफ स्पीकिंग में आना चाहिए। अगर मैं सरल भाषाओं में बोल रहा हूँ, तो सारे पॉइंट्स मेरा सरल भाषाओं में आना चाहिए। मैं अगर बेसिक हाई फाई टेक्निकल टाइप की डिवोटी हूँ, तो मेरा स्टैंडर्ड ही हर एक वही टाइप की आएंगे। लेकिन मैंने क्या कि कुछ पॉइंट्स उसकी था मैंने एजिट्यूड उठा के बोल दिया, कुछ पॉइंट्स उस लेक्चर की था मैंने, तो दोनों में फिट नहीं बैठेगा। पॉइंट्स मैंने उससे लिया हमने, लेकिन उस पॉइंट को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, मेरा जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग है हर एक लेक्चर के उसी में फिट करना है, उसी को उस पॉइंट को प्रेजेंट करना।
तो ये कॉन्शियसनेस खुद के लिए डेंजरस है ना, कि अगर मैं सोचता हूँ बार बार कि मैं वहाँ अच्छा बोलूंगा इसको पॉइंट वहाँ बोल सकता हूँ, तो रियलाइजिंग करने की अपेक्षा है ना मेरा, फिर वो अलग मोटिवेशन हो रहा है।
तो धीरे धीरे आपको ये सब प्रैक्टिस करना हो है।
मैं तो कल सोच रहा था मैंने अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं किसी को पकड़ूंगा।
ये सॉल्यूशन तो नहीं है, ये तो सॉल्यूशन नहीं है।
मैं कल बहुत ही डिप्रेस में रात भर बहुत ही दिक्कत
हुई। तो बी हम्बल कि मेरा क्या है, मैं एक लेवल वन की डिवोटीज को मैं एक लेक्चर नहीं दे पाया, मेरा क्या पोजिशन है। सो आई हैव टू बी मोर हम्बल, मोर डिपेंडेंट, Again try. तो experience speaker का मतलब ही यही होता है कि वो ये सब already हैं, face कर चुके हैं, and face कर चुके हैं, उनको पता होता है कि ऐसे situation में भी हाँ वो कभी वो नहीं आता। कभी कभी देते देते भी ऐसा होता है, हो सकता है आपको कि दे रहे हो बहुत अच्छा, सारे devotees बोल रहे हो very nice, देते देते बीच में ही आपका आ गया है आज का लेक्चर बहुत अच्छा हो रहा है कि बाद ही सारे गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी।
बहुत चटल है ब्रो जी, बहुत आ रहे हैं।
तो कैसे उस चीज को कंट्रोल करना है कि है ना, आपको खुद ही फील हो रहा है अच्छा दे रहा हूँ मैं, पर कैसे इस चीज को हम्बल स्टेट बनाया, यही सब चीज। तो इट्स नॉट इजी है ना टू स्पीक, सबसे डिफिकल्ट है सब। इसीलिए जनरली शुरू शुरू में तो डिवोटी लाइक करते हैं मेरा नाम आ जाए लेक्चर में, मेरे को देने का मौका मिल जाए तो अच्छा है, पर एक समय के बाद वो बोलते हैं मेरा नाम किसी और को मिल जाए तो अच्छा
है। मुझे कभी विश्वास लग रहा था कि अभी यहाँ पे कौन कौन अगला लेक्चर दे सकता है, कमल नेता प्रमोद दे सकते हैं अगला लेक्चर।
मेरा जब भागवतम क्लास होता है ना टेम्पल में, तो मैं कुछ भी हो कैसे इतना टेंशन लेता है। और उस दिन अगर साधुरी प्रभु आके बोलते हैं कि वो महाराज आ गया, तो सॉरी प्रभु जी आज महाराज का होगा, ठीक है। सॉरी प्रभु जी ने नहीं सॉरी आपका फिर अगली से ट्राइट कर देते हैं, मतलब प्रभु जी अगली जरूरत नहीं है, वो अगले महीने कर देंगे। तो काइंड ऑफ इज, लेकिन क्या करें, उस तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको मिलता है। शुरू में जब आप चाहते हो मेरा हो लेक्चर, तब आपका होता नहीं है, तब डिवोटीज केयरफुली करता है ना, नहीं देता।
डिवोटी कॉन्शियसनेस का जो बताया आपने, कॉन्शियसनेस तो कहीं पॉल्यूटेड है, क्योंकि हम जब कभी देखते हैं ना कि डिवोटी बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, तो मन में क्या आता है कि अरे मैं भी ऐसा लेक्चर दे सकता हूँ ना, इस तरीके से मैं ही बोलूंगा अच्छा है ना, लोग प्रेज करेंगे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो है।
वो तो है, तो इसीलिए हमें ये सारे छोटी छोटी जो है सटल सटल कॉन्शियसनेस जो है पॉइंट्स है, वो हमें कैच करना है डिवोटीज को, कि हम कहाँ पे वीक है हमारा, है ना। तो आप समझ रहे हो ना, सक्सेस आने से पहले ही हमें प्राइड आके पोल्यूट कर देता है, सक्सेस आने से पहले। और सक्सेस जब आप अगर इलोक्वेंट स्पीकर हो गए, जहां जा रहे हो वहां डिवोटी बन जा रहा है, आप एक लेक्चर दे रहे हो मतलब 10-15 डिवोटी उसी में बोल रहे हैं, प्रभु जी का जो लेक्चर सुना मैंने आनंद में, उसी से मेरा कृष्ण कॉन्शियस लाइफ शुरू हो गया। कहीं भी जा रहे हो आप, ऐसा हो रहा है, आप उस चीज को टॉलरेट कर पाओगे
नहीं,
है ना, आप प्रभुपाद ने पम्प्ड अप हो जाओगे आप तुरंत। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद को क्या सक्सेस मिला, और उसके बाद भी प्रभुपाद उससे कुछ भी अफेक्टेड नहीं है। तो उसको हम अभी समझ नहीं सकते, हमें लगे हाँ प्रभुपाद को सक्सेस मिले, तो ओके सक्सेस मिले कौन फर्क पड़ता है, इतना हमें भी मिलेगा, हम भी नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हम करेंगे ना तब हमें पता लगेगा, थोड़ा भी सक्सेस आएगा, थोड़ा भी आप देखोगे दो तीन लेक्चर में अगर आपसे डिवोटी बन गए, आप उसको सहन नहीं कर पाओ, स्टम्बल डाउन। और इसलिए भगवान जो है जानते हैं हमारा अभी सिचुएशन क्या है, इसलिए देते नहीं है सक्सेस इस समय, ताकि हम एक्चुअली वी बिकम प्यूरिफाइड, हम अपना लेवल को समझे कि हमारा सिचुएशन है क्या, कुछ भी नहीं है, जो भी हम कर पा रहे हैं, समझती है कृष्णा गुरु एंड कृष्णा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा क्रिएशन का, हाँ जो क्रिएशन में बहुत कुछ आप समझो वो करोगे। एक लेक्चर है भक्ति रसामृत महाराज का, तो मैं उसको आपको देने का कोशिश करूँगा, उसको ले लीजिएगा। तो उसमें उसमें समझाया हुआ है, थर्ड कैंटो का 10th चैप्टर में बताया है कि क्रिएशन का डिविजन। तो क्रिएशन जो है उसमें शॉर्ट में हम बताते हैं कि क्रिएशन जो है दो प्रकार की क्रिएशन है। 10th चैप्टर, थर्ड कैंटो की 10th चैप्टर है। तो उसमें क्रिएशन जब होता है इस मेटेरियल यूनिवर्स की, तो ये क्रिएशन दो टाइप की क्रिएशन होती है। तो पहले बताया जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, कि सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी, क्रिएटर ब्रह्मा जी। फिर बताया जाता है महाविष्णु इज द क्रिएटर, है ना। तो कौन है क्रिएटर? तो दो टाइप की क्रिएशन होती है ना। एक है प्राइमरी क्रिएशन, सो कहते हैं प्राकृत सृष्टि, और एक है सेकेंडरी क्रिएशन जो है वैकृत सृष्टि। ठीक है, तो प्राइमरी क्रिएशन जो है वो जो क्रिएशन है वो महाविष्णु करते हैं, है ना, और जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी करते हैं। ठीक है, और तो जो प्राइमरी क्रिएशन में है उसमें सारे यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। जो यूनिवर्स के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिस चीज से सारे डिटेल्स क्रिएट होंगे, वो सारे एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, और वो सारे जब तक मैनिफेस्ट रहता है और फिर फाइनली एनाइलेट हो जाता है। ये जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को बोलते हैं महाकल्प।
इसमें ये बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं,
हाँ सारे एलिमेंट्स, मतलब पूरा मैनिफेस्टेड रहता है पूरा यूनिवर्स, और फिर वो खत्म हो जाता है। तो ये जब तक ये यूनिवर्स रहता है, जैसे महाविष्णु की जो एक सांस से हम बोलते हैं ना कि सांस से निकलता है और जब सांस वापस लेते हैं तो फिर खत्म हो जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन है उसको महाकल्प। और जो उस दौरान जो है ब्रह्मा जी का सृष्टि होती है, गर्भाधिशायी विष्णु से ब्रह्मा जी का जीवन होता है, फिर ब्रह्मा जी का मृत्यु होती है। तो वो जो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन के समय जो है ना, वो उस दौरान भी क्या है, वो ब्रह्मा जी का जब सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी जब जन्म होते हैं तो फिर क्रिएशन होती है। तो उसके अंदर की डिटेल सारे क्रिएशन होती है, और जब ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में पूरा डिवास्टेशन हो जाता है, लेकिन वो प्राइमरी चीज रहती है। फिर हो सकता है दोबारा ब्रह्मा जी का जन्म हो, फिर दोबारा क्रिएट हो। तो वो जो ब्रह्मा जी का एक जीवन काल है, जिस समय फिर सृष्टि होती है डिटेल्स, वो कहते हैं विकल्प। विकल्प एक महाकल्प, फिर विकल्प ब्रह्मा जी के जीवन का। और ब्रह्मा जी का हर एक दिन में भी है कुछ लोगों का सृष्टि होती है, और उस दिन के बाद भी जो है वो संहार होती है। रात की समय ब्रह्मा जी का, रात की समय तो उस समय कुछ लोअर प्लेनेटरी सिस्टम जो है वो होते हैं, ब्रह्म लोग रहता है क्योंकि ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो एक कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं।
एक दिन मतलब 24 आवर या सिर्फ 12 आवर?
24 आवर, तो मतलब उस पूरा ड्यूरेशन को कल्प। तो प्रकृत सृष्टि का जो है उसमें है कि जो आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण से फिर सबसे पहले जब एक्सपेंशन होता है, बलराम जी होते हैं, फिर चतुर्भुज होते हैं, फिर नारायण होते हैं, महाशंकरषण होते हैं, फिर महाविष्णु जब मटेरियल वो यूनिवर्स को क्रिएट करने के। तो महाविष्णु जब क्रिएशन कैसे होती है, जो कोई भी क्रिएशन को उस तरह से समझते, जैसे किचन में बनाते हैं ना हम लोग, सब कुछ कुकिंग करते हैं, तो उसमें पॉट चाहिए, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फिर उसको हिलाते रहते हैं, फिर जाके चीज बनती है। तो उसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है उनकी, महाविष्णु की दृष्टि। ठीक है ना, उनकी जो ग्लैंड्स, तो उनकी ग्लांस से ही सारी चीज क्या होती है, इम्प्रेगनेंट होती है, सारी सृष्टि होती है। तो सबसे पहले जो चीज महाविष्णु की दृष्टि से जब उत्पन्न होती है वो है प्रधान। प्रधान आपने सुना होगा, प्रधान। प्रधान क्या है? प्रधान किसको कहते हैं? प्रधान कहते हैं जो तीन थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, तीन गुण जो है उसकी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, ठीक है, उसकी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म के रूप में जो रहता है सबसे पहले इस मेटेरियल यूनिवर्स क्रिएशन से। सबसे पहले जो एलिमेंट होता है वो है प्रधान, ठीक है। अब उसमें जो है उसमें महाविष्णु की दृष्टि पड़ता है, और फिर क्या इंग्रेडिएंट होता है उसमें? काल, टाइम। टाइम एक इंग्रेडिएंट है। तो काल, प्रधान और महाविष्णु की दृष्टि जब पड़ता है तो वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाता है? महतत्व बन जाता है।
महतत्व,
महतत्व। आप इस महत्व
थोड़ा सा दोबारा से बताइए। प्रधान के बाद,
प्रधान के बाद जो प्रधान के साथ दो चीज मिलती है, एक काल और एक महाविष्णु की दृष्टि। तो ये चीज मिलके जो है क्या बनता है? एक फर्स्ट मटेरियल सब्सटेंस बनता है।
काल मींस टाइम।
टाइम अभी तक मटेरियल कुछ था नहीं, तो अभी जो पहला बना ये महत्व, तो ये मटेरियल सब्सटेंस है ना, मैटर है ना एक तरह से। तो ये जो है ये डिवाइड करता है, महत्तत्व जो है इस इज द थिंग डिवाइडिंग मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये पहला मटेरियल एलिमेंट है। फिर इससे क्या होता है? अहंकार उत्पन्न हो जाता है इससे, महत्तत्व से जो है जब ये दृष्टि और अल्प पड़ता है, दृष्टि मतलब हिलते हैं फिर, है ना, दृष्टि से फिर उसकी चर्निंग होती है। तो उसकी जब चर्निंग होती है तो अहंकार उत्पन्न हो गए वहां से। तो आपको पता होगा कि वो बताया जाता है कि मटेरियल एग्जिस्टेंस की सबसे पहला चीज जो है, सटल चीज है, वो ईगो है, फॉल्स ईगो, अहंकार,
मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस,
है ना। क्योंकि जब लिबरेशन होने से पहले, मुक्ति से पहले अहंकार से जब मुक्त हो जाता है तो देन ही गोज बैक टू गॉड। तो सबसे पहले फिर अहंकार उत्पन्न होते हैं, और फिर जो है वो तीन मोड्स उत्पन्न होती हैं, थ्री मोड्स। ठीक है, आप ये तीन मोड और अहंकार, तो सतगुण और अहंकार मिलके क्या बनता है? सतगुण और अहंकार मिलके माइंड उत्पन्न होता है, इसलिए माइंड को हमेशा सतगुण की माना जाता है।
मन,
मन को, मन एक्चुअली सतगुण से बना हुआ है। लेकिन मन जब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है रजोगुण में या तमोगुण में हो जाता है, इसलिए हम शांति नहीं मिलती हमें, है ना। तो माइंड शुड बी ऑलवेज इन मोड ऑफ गुडनेस,
सतगुण प्लस फॉल्स ईगो,
हाँ अहंकार मिलके माइंड उत्पन्न होता है। माइंड के साथ साथ देवता, डेमिगॉड्स उत्पन्न होते हैं
माइंड के साथ।
एक तरह से माइंड उत्पन्न हुआ, एक तरह से डेमिगॉड्स उत्पन्न
हुआ।
बहुत कॉम्प्लेक्स,
वी कैन नॉट परसीव इट।
हाँ कर सकते, बहुत आगे जाके जैसे गोपी प्राणायाम प्रूफ है, वो काफी अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं।
इट्स लाइक अ केमिकल रिएक्शन, मींस लाइक
अब ये चीज ना धीरे धीरे जब परसीव होगा, चीज को समझ में आएगा, तभी चीज एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। आप एक छोटे बच्चे को आप एटॉमिक रिएक्शंस आप समझा नहीं सकते, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं समझा सकते, कैलकुलस नहीं समझा सकते, तो नहीं समझ सकता छोटा बच्चा। उसी तरह हम अभी छोटे बच्चे हैं जिसको नहीं समझ सकते कि कैसे संभव है। अब ये चीज समझ में नहीं आता था, लेकिन जब प्रॉपरली लेक्चर्स है ना, एडवांस ड्यूटीज बताते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है जितना बताते हैं। फिर अहंकार और मोड ऑफ पैशन से, मोड ऑफ जो रजोगुण से वो क्या बनते हैं, सेंसेस बनते हैं, है ना, सेंसेस बनते हैं और साउंड बनता है रजोगुण और उससे। तमोगुण के बारे में कुछ वर्णन है नहीं अभी, है ना। तो सेंसेस बन गया और क्या बन गया, साउंड बन गया। तो सबसे पहले हाँ जो एलिमेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स में से फर्स्ट सेंस ऑब्जेक्ट कौन सा बनता है ये तो मालूम है आपको, साउंड बनता है। तो सबसे अभी मैटेरियल क्रिएशन की जो एलिमेंट्स, प्राइमरी क्रिएशन के एलिमेंट साउंड बन रहा है। अब फिर साउंड और थ्री मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर और काल और क्या रह गया, और कौन सा मिक्सिंग हो रही है, दृष्टि, हाँ महाविष्णु की दृष्टि। फिर क्या बनेगा, हाँ आकाश बन गया साउंड, है ना। तो साउंड से फिर स्काई बनता है, आकाश, फिर आकाश साउंड और
आकाश में, आकाश में क्या क्या है, साउंड है,
साउंड, हाँ साउंड
प्लस ग्लैंड्स
और थ्री मोड्स और काल और ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्या बन गया, स्काई बना। अब ये सारी चीज तो है ही, स्काई भी बना तो वहां पे ही है अभी, तो ये सारी चीज प्लस स्काई फिर टर्निंग हो रही है, तो क्या बनेगा, स्पर्श बनेगा,
स्काई प्लस साउंड,
हाँ, जितना थे पहले,
अच्छा प्लस ये,
हाँ थ्री मोड्स मेटेरियल नेचर, फिर काल दृष्टि और साउंड स्काई, सारे चरणी होने के बाद क्या बना, उसमें एडिशनल का एलिमेंट आ गया, टच, स्पर्श, स्पर्श की जो अनुभूति है वो जनरेट हुआ। फिर आप स्पर्श और ये सारी चीज के चरणी हुआ तो क्या होगा, स्पर्श किस से आता है, स्पर्श
सेंस ऑब्जेक्ट,
वायु, वायु उत्पन्न होता है, वायु का ही प्रॉपर्टी है ना स्पर्श, तो पहले प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है फिर वो एलिमेंट उत्पन्न होता है। साउंड किसका है, आकाश की है प्रॉपर्टी, तो पहले साउंड होता है फिर आकाश उत्पन्न हुआ, तो ये सारे चीज से फिर स्पर्श उत्पन्न हुआ, फिर वायु उत्पन्न हुआ। अब ये सारे चीज के साथ फिर चर्निंग हुआ तो फिर क्या हुआ, उत्पन्न रूप उत्पन्न हुआ, रूप उत्पन्न हुआ, तो फिर सारे चीज के फिर चरणी होने के बाद रूप किसका प्रॉपर्टी है, अग्नि, तो अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या है, स्वाद उत्पन्न हुआ, फिर स्वाद उत्पन्न हुआ तो उसके बाद फिर चरणी हुआ तो जल, जल उत्पन्न हुआ। फिर चरणी होते होते गंध, स्मेल हुआ, और फिर स्मेल से फिर पृथ्वी उत्पन्न हुआ, मिट्टी उत्पन्न हुआ, है ना। तो ये सारे चीज जो है ये क्या हुआ, प्राइमरी एलिमेंट्स है। और उसके बाद फिर और जब चरणी होते गया फिर जो है ज्ञान और क्रिया उत्पन्न हुआ, तो ज्ञान से ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुआ, क्रिया से कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुआ।
यहाँ पे सेंसेस पहले बताया था, वहां पर ये सारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय नहीं था,
नहीं था वो तो सेंस, सेंस की वो है, हाँ। तो ये एक एक मतलब आप ये भी मान लो कि उसको जस्ट सिर्फ सेंस को परसीव करने का शक्ति है, और यहाँ पे एक एक चीज का जो डिविजन है कि किसका क्या एक्चुअली एक्टिविटी है, तो वो उत्पन्न होगी उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक फंक्शनिंग हो रही
है। पृथ्वी के बाद है ना,
पृथ्वी के बाद
ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय,
कर्मेंद्रिय
सभी दोनों,
हाँ दोनों। उसके बाद फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स, अभी कोई बॉडी मतलब एक तरह से इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई लिविंग एंट्री इस तरह से नहीं बने, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है महाविष्णु फिर एक अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और एक एक ब्रह्मांड में गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में हम प्रवेश कर जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके लिविंग एंटिटीज का बॉडी क्रिएट करते हैं, है ना? तो थोड़ा बहुत
यस ब्रह्मा जी की भी इन्हीं से बॉडी बनी है क्या?
हाँ इन्हीं से
ब्रह्मा जी से रज से बने थे, भगवान के रज रजोगुण से।
हाँ रजोगुण के, लेकिन है तो इसी मटेरियल बॉडी है। तो ब्रह्मा जी जब बने, ये जो कमल के जो वो है स्टेम है, अब इसी स्टेम में ही एक्चुअली 14 प्लैनेटरी सिस्टम है ना, और इसी में जो है फिर ब्रह्मा जी उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, उर्ध्व स्वर्ग मर्त और पताल, तीन, इसलिए उसको त्रिभुवन कहते हैं कभी। एवे यश विशुक त्रिभुवन, त्रिभुवन स्वर्ग, ऊपर को बोलते हैं स्वर्ग लोग, नीचे को बोलते हैं पताल लोग, उससे मर्त लोग। अब फिर इसको फिर 14 पार्ट में भी डिवाइड किया जाता है
इन्हीं तीन को,
इन्हीं
जो मिडिल वाला पार्ट है अर्थ है,
अर्थ है
उसके ऊपर फर्स्ट
स्वर्ग लोग कहते हैं,
नीचे पाताल,
स्वर्ग लोग सत्य लोग भी आ गया।
हाँ सब लोग,
तब लोग सारे।
तो उसमें फिर डिवीजन होती है, फिर सेवन ऊपर अर्थ को लेके ऊपर सेवन और नीचे सेवन, तो उसको 14। तो इसलिए कभी कभी किसी भजन में आता है कि नाम बिना किचु ना ही ग्वार 14 भुवन माझे, 14 भुवन। तो जैसे आप बताए कंफ्लिक्टिंग है, कभी कभी शास्त्र में इधर तो लिखे त्रिभुवन, इधर बोले 14 भुवन, कौन सा भुवन है? तो ये तीन जो है ये ब्रॉड कैटेगरी है और ये माइन्यूट कैटेगरी, ठीक है। अब फिर इसमें ना और भी बहुत सारे चीज है कि उसके बाद जब ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, तो अभी थर्ड चैप्टर में ये सब शुरू हो जाता है कि कैसे कैसे ब्रह्मा जी का भी वो है कि कैसे कैसे बॉडीज देना है, क्योंकि बॉडी इज रिक्वायर्ड, नहीं जब तक बॉडी नहीं होगा लिविंग एंटिटीज अपने आपको प्यूरिफाई करेंगे कैसे? अभी तो सारे अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है, सोल्स अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है, ठीक है, और वो सारे बॉडी से ही हैं, फिर उनको एक्टिविटीज करने को मिलेगा, फिर कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगा, तो इसको पॉपुलेशन बढ़ाना, पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो फिर ब्रह्मा जी का जो है वहां से क्रिएशन शुरू होता है। उसके बीच में आपको वो भी मिलता है कि कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो बताएं कि एटॉमिक एक एटॉम जो सबसे माइन्यूट टाइम है, जैसे घड़ी में अभी माइन्यूट टाइम क्या है, एक सेकेंड, या ये इस घड़ी में टाइम एक सेकंड ना, आपका डिजिटल में मिली सेकंड भी होता है, सेकंड भी होता है, लिस्ट काउंट उससे भी, लेकिन उससे नीचे का दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे है ना कि वो बताते हैं तो जो सबसे माइन्यूट जो टाइम है वो सन का ट्रेवलिंग से होता है, कि सन जो है ट्रेवर्स करता है, तो एक एटॉम को ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगता है सन के उससे जो है पता, पहला यूनिट है टाइम का, और वो है उसको त्रुटि कहते हैं, त्रुटि आपको मिल जाएगा वहां पे पढ़ोगे ना भागवतम एटॉमिक। तो एक त्रुटि मतलब 8/13,500 सेकेंड्स, वन त्रुटि मीन्स 8/13,500 सेकेंड्स, आप समझ सकते कितना छोटा है। फिर उसके जो है शायद 100 टाइम्स जो है उसको कहते हैं वेद, वेद। तो उसके बाद आता है लव, तो हम बोलते हैं लव मात्र साधु संग, लव, तो वो लव आता है। तो
त्रुटि के बाद
वेद आता है, वेद, वेद के बाद आता है लव, लव के बाद आता है निमेश, बोलते हैं निमेश, निमेश में तो बताते हैं कि आंख का जो वो है पलक निमेश, तो वो है 8/15 सेकेंड्स एक निमेश, 8/15। फिर आता है क्षण, फिर आता है ना कास्था, फिर लघु, फिर आता है दंड, 30 मिनट्स में एक दंड होता है, फिर प्रहर आता है, प्रहर, प्रहर मतलब 3 आवर्स में एक प्रहर होता है। फिर आता है डे, हाँ जानते हो, फिर नाइट, डे नाइट सही होता है। तो फिर आता है कौन सा, पक्ष, फिर पक्ष आता है,
शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष।
कास्ता के बाद क्या होता है ना,
कास्ता बाद लघु,
दंड,
लघु के बाद दंड, दंड के बाद प्रहर, प्रहर के बाद डे एंड नाइट, फिर आता है पक्ष। तो ये हुआ स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके, फिर हाईएस्ट यूनिट हमने देखा है महाकल्प कल्प विकल्प है ना, और एक कल्प में फिर जो है ना टाइम की कैलकुलेशन है, एक कल्प मतलब कितने मन्नंतर होता है उसमें, है ना, कितना मन्नंतर होता
है, 72 चतुर्युग 14 साइकिल 27 मन्नंतर। ब्रह्मा जी के
एक दिन में एक कल्प में हमारा कितना होता
है,
14
मन्नंतर
दिन में होता है,
दिन में
1000 चतुर्युग होता है, है ना, 1000 चतुर्युग, राइट। तो 1000 इंटू जो 4 युग है, 70 दापरता कली, तो ये 4 युग होता है, और फिर 14 मन्वंतर होता है, 14 मन्वंतर एक कल्प में, तो एक मनु का, तो वो भी जाइगेंटिक टाइम कैलकुलेशन है ना, एक मनु का मतलब 70, एक मनु का मतलब 71 करीब है ना चतुर्युग होता है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है टाइम कैलकुलेशन। फिर उसके आगे जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, जब बॉडी बनाते हैं और लिविंग एंटिटीज में, तो उन्होंने 5 जो है सबसे पहले 5 अविद्या का सृष्टि करते हैं, 5 अविद्या इन साइंस इग्नोरेंस का, हरे कृष्णा। तो सारे लिविंग एंटिटी उस 5 इग्नोरेंस से होते हैं, 5 इग्नोरेंस का 4 तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है, एक का थोड़ा सा वो है। तो पहला जो इग्नोरेंस है जो मैं साइंस है वो है फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी। तो ये 5 जो है ना साइंस अविद्या, ये हम सब की बॉडी में साथ होता है, ये नेसेसरी है इस मटेरियल यूनिवर्स के लिए, हमें एग्जिस्ट करने के लिए। तो फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी, सेकंड है अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, थर्ड है फॉल्स ओनरशिप, प्रोप्रिएटरशिप जिसको हम कहते हैं फॉल्स प्रोप्रिएटरशिप, फोर्थ है एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, एंड फिफ्थ है बॉडीली कॉन्सेप्शन। इसमें मुझे थोड़ा सा जो ऊपर का है ना फर्स्ट और लास्ट वाला उसमें थोड़ा सा मुझे डिफरेंस ज्यादा पता नहीं चल रहा, तो लेकिन अभी के लिए आप इतना ही लिख लीजिए कि पहला था रियल फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी, और ये है बॉडीली कॉन्सेप्शन, ठीक है, बाकी 3 क्लियर है, अफ्रेड ऑफ डेथ, फॉल्स ओनरशिप और एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये 5 अविद्या से हम बाउंड होते हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड में, तो हम कैसे फिर हम वापस प्यूरिफाई होंगे। तो ये मतलब ये इग्नोरेंस में जीवित जीवन बिताने के लिए ये सब चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमें प्यूरिफिकेशन के लिए फिर उन्होंने 4 ज्ञान की सृष्टि की और 4 प्रिंसिपल, उसमें एक है शंख्य, शंख्य मतलब फिलोसोफी जिसे हम जान सकते हैं शंख्य, फिर योगा, फिर वैराग्य और फिर तप,
तपस्या,
हाँ। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञान का, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाँ 4 कुमारों का उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी जब पहले जीव को जब सृष्टि कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने शरीर से सृष्टि हो रही थी, उनको कोई वो मैन ओमैन की कोई जरूरत नहीं थी उस समय, ठीक है। तो वो अपनी ही बॉडी के आइदर उनकी कोई बॉडी का अंग से या मन से या चिंता से, हाँ चिंता से उत्पन्न हुआ। तो चार कुमार का उत्पन्न हुआ और चार कुमार को ये चार जो ज्ञान की दिया है उनको सौंप दिया और फिर उनको कहा कि आप क्या करो, ये यूनिवर्स को क्रिएट करो, यूनिवर्स को फील करो जीव से, है ना जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ठंड नहीं लग रहा है अभी इधर आ सकते हो? तो यूनिवर्स को क्रिएट करो आप, मतलब यूनिवर्स को फील करो जीव को। अब फिर उन्होंने कहा कि नहीं होगा, हम नहीं करना चाहते, हाँ ये इम्पोर्टेंट सर्विस है पर हम नहीं, कोई और करें। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का जो एक तरह से इंस्ट्रक्शन है उसको उन्होंने डिनाई कर दिया, फॉलो नहीं किया उनका इंस्ट्रक्शन को और उससे जो है ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, क्यों नहीं किया उन्होंने। और प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने फॉलो नहीं किया इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक तरह से ब्रह्मा जी गुरु थे, फादर थे, है ना, तो उनकी हमें तो नॉर्मल जो प्रिंसिपल है वो हमें इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना, पर यहाँ पे चार कुमार जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो लिबरेटेड थे और दे वर हायर कॉन्शियस, इन कॉन्शियसनेस दे वर इवन हायर, तो इसलिए दे हैड राइट कि वो जो है उसको वो इंस्ट्रक्शन को वो रिजेक्ट कर सकते हैं। वो हर कोई नहीं कर सकता, समझ रहे, ये तभी संभव जो आप अपनी आपका कॉन्शियसनेस आपके गुरु की कॉन्शियसनेस से भी ऊपर है, जिस कॉन्शियसनेस से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उससे भी आपकी हायर। ये तो हम तो कर नहीं सकते, हम तो नहीं कर सकते यार, और कंडीशन से तो दे वर बॉर्न लिबरेटेड सोल्स, तो वो तुरंत समझ सकते हैं कि ये चीज जो है वो यूजलेस है हमारे लिए। और कोई एग्जांपल दीजिए जो जिन्होंने इस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया।
रामानुजाचार्य की कथा में आते हैं ऐसे इंस्टेंसेस। उनके जो शायद पुराने वाले जो उनके जो गुरु थे उन्होंने वो कप्यासन वाला जो इंसिडेंट आता है, उन्होंने पुंडरीकाक्ष जो भगवान की जो आंखें हैं वो कुछ कंपैरिजन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ अपना दूसरा एक्सप्लेनेशन, वो कमल के समान है, तो
वो मतलब जन्म लेते ही पिता के आज्ञा के नहीं माने और चलते बने जाने,
आज्ञा तो नहीं दिए थे उनको,
मतलब उनको बोल रहे थे कि जो
वो तो कंपेशन से वो चाह रहे थे कि वो घर में रहे।
जब ब्रह्मा जी ने और एक्सपेंशन किए नारद मुनि ने सबको बोला कि
वो तो उन्होंने प्रीच कर दिया उनको, लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को कि आप ऐसे मत करो या ये करो उसको नहीं,
बलि महाराज वाले जो उनके गुरु ने उनको बोला।
और एक भी था तो बलि महाराज का पहला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बलि महाराज का क्या है, शुक्राचार्य ने कहा कि आप इसको मत करो, लेकिन उन्हें डायरेक्ट ऑन द फेस उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को करना है, ठीक है। उसका एक्सप्लेन करते हैं गोलोक महाराज में, कहते हैं कि क्योंकि शुक्राचार्य ने जो है उनका कॉन्शियसनेस ऐसे था कि अगर आप दे दोगे सारी चीज मेरा कैसे चलेगा काइंड ऑफ तो इस कहने और बलि महाराज तो महाजन थे, तो वो तो समझ रहे थे कि हैं ये कॉन्शियसनेस में नहीं, ये तो कृष्ण को देना है मुझे, सब कुछ भी अगर हर लेते हैं कृष्ण फिर भी नहीं कोई देना है, तो इसलिए उन्होंने वो किया। और शायद माधवाचार्य इसमें है जो उनको कोई मंत्र दिया था, बोले कि आप किसी को मत बोलो, और शायद उन्होंने जाके जोर जोर से
ओम नमो नारायण मंत्र सबको दे दिया था,
तो उन्होंने सबको लिबरेट करने के लिए सबको जाके, और फिर जब उनके गुरु ने देखा कि उनका प्योर इंटेंशन से वो जाके कर रहे हैं, है ना, नॉट फॉर प्रूविंग वन सेल्फ टू बी हायर, उसका प्रिंसिपल कुछ और है, वो है ना हायर कॉन्शियसनेस है कि दूसरे के लिए उनको उद्धार करने के लिए, अल्टीमेटली कृष्ण को खुश करने के लिए, तो वो कृष्ण कैसे खुश होंगे वो लोग ज्यादा जानते हैं, तो इसलिए देख एंड टेक ठीक है। तो इसमें वो कह रहे थे, और फिर प्रभुपाद ने वहां पे एक श्लोक का उदाहरण देते हैं कि भागवतम के एक श्लोक का कि देवर्षि भूतात्मा ऋणम पितृम न किं करुणायम ऋणी च राजन सर्वात्मना य शरणम गत मुकुन्नम परिरितम कर्तम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चाहे तो आप लिख सकते हो उसका नंबर 11.5.41। तो इस श्लोक का प्रभुपाद रेफर करते हैं, उसमें बताया कि एनी वन हु हैज कंप्लीटली गिवन अप ऑल वर्ल्डली रिलेशनशिप्स एंड हैज टेकन एब्सोल्यूट शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड who gives us salvation and who alone is fit to be taken shelter of, is no longer a debtor or servant of anyone, including demigods, forefathers, sages, other living entities, relatives, and members of human society. Is no more debtor. Otherwise, हम सब का ऊपर ऋणी होते हैं। जन्म दिए हुए पिता माता के ऊपर हम ऋणी हैं, सेजेस के ऊपर, चंद्र सूर्य सबके ऊपर हम ऋणी होते हैं, और सबके ऋण चुकाना होता है, ठीक है, इसलिए हमें कार्य करना पड़ता है, हमें ड्यूटीज होते हैं, नहीं बोल सकते हम जो है बिल्कुल। लेकिन कौन है जो ऋणी नहीं है, बोलते हु हैज कंप्लीटली गिवन अप ऑल वर्ल्डली रिलेशनशिप and has taken absolute shelter of the lotus feet of the Lord. तो ये चार कुमार ऐसे, therefore they are not subjected to such instructions. ठीक है? Okay.
मुझे ये जो चार कुमार थे, after giving four purification तब बने, मतलब salvation तब हुआ, ये पहले से ही pure state में?
पहले से, जन्म से।
लेकिन इसमें तो कुछ इम्पर्सनलिज्म वाली भी
लेकिन लिबरेटेड है, इम्पर्सनल भी होने से क्या है, लिबरेटेड, दे आर नॉट मटेरियल,
कंप्लीट शेल्टर तो फिर भी नहीं हुआ ना, लिबरेशन मतलब
कंप्लीट शेल्टर होता है, क्या है ब्रह्म जितने भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म है, लेकिन है तो डिपेंडेंट भगवान के ऊपर पूरा, मटेरियल किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है शेल्टर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मटेरियल किसी भी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, वेल लिमिटेड, ठीक है, मतलब इसको प्रभुपाद ने कोट किया उस पर्पट में समझाने के लिए कि कोई भी उस डेटर नहीं होते, किसी भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता है उनका, अगर वो इस तरह से कंप्लीटली कृष्ण के ऊपर सरेंडर है, ठीक है। तो हमें इसलिए बाकी ड्यूटीज करते हुए हमें अपना जो है स्टेज जो है हमें इतना एडवांस करना है कि हम धीरे धीरे फुल्ली सरेंडर टू कृष्ण होते जाए, बाकी ड्यूटीज को करते हुए, हम ये नहीं कह सकते अभी एकदम से सारे ड्यूटी छोड़ दें हम नो मोर डेटर, वो फिर हमें अपराध लग सकता है, बाकी किसी जीवों के ऊपर भी उनका नहीं है, दे फुल्ली सरेंडर, और फुल्ली सरेंडर जैसे अभी हम लोग देख रहे इट्स नॉट इजी, आज हम बोल दिए कि हम फुल्ली सरेंडर्ड है, नहीं होता है हमारा माइंड, इट्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है।
फिर तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी इन चार कुमार से नाराज होते हैं, या फिर मतलब फिर बाद में क्या,
ब्रह्मा जी ये प्रभुपाद बताते कि ब्रह्मा जी समझ गए थे कि दे आर हाँ जिसे हाँ एडवांस्ड डिवोटीज हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो कभी कभी डिवोटीज भी होते हैं ना, कोई डिवोटी बोलते हैं कि प्रभु जी आप ये सर्विस कर दो, है ना, आप ये सर्विस कर दो। अरे नहीं प्रभु जी, मेरा दूसरा सर्विस है मैं। तो जनरली डिवोटी समझ जाते हैं, सीनियर डिवोटी समझ जाते हैं, हाँ उनका वो सर्विस है, ठीक है वो कर, समझ जाते हैं, नॉट टेक ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कृष्ण की सर्विस कर रहे हैं, कोई और ही सर्विस कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड, ये तो होते ही है, होता है ना। लेकिन सम हाउ अदर उस मोमेंट पे ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि क्यों मना कर दिया, मेरे को करना है, क्यों मना रहे, होता है ना। आप मान लो करना है आपको, प्रिंट करना है, ये करना है, आप हेल्प चाहिए, तो आपने उस डिवोटी को बोला, बोले ब्रो जी मेरा कुछ और सर्विस, तो आपको एकदम से क्रोध आता है, यार मैंने बोला यार, बाद में समझ जाते हो कि हाँ उन्होंने उनको और सर्विस है, कोई बात नहीं देख लेंगे आप बाद में कुछ ना कुछ हो जाए, पर उस समय एकदम से क्रोध आ जाता है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया उस समय कि क्यों मना कर दिया मेरा, और जब क्रोध आया तो फिर ब्रह्मा जी के याद से आईब्रोज से क्रोध प्रकट हो गया, और वो जो है रेड और ब्लू कलर की है, जो है शरीर हुए, और रेड ब्लू मतलब पैशन और इग्नोरेंस, तो प्रभुपाद कहते हैं क्रोध मतलब ये दोनों पैशन और इग्नोरेंस ही होती है, और फिर उससे हाँ जो बॉडी हुए है रुद्र शिव जी, और फिर उन्होंने कहा शिव जी को हाँ वो भी देखिए ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, लेकिन शिव जी का पोजीशन क्या है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न है कि नहीं, तो ये सब स्पिरिचुअल चीजें समझ नहीं सकते, पिता से पुत्र हाँ स्पिरिचुअली हायर हो सकता है कि नहीं, तो दे नो हाँ, तो वो एकदम से चीफ ऑफ द डेमिगॉड्स करके ही संबोधन करते हैं कि आप हाँ जो है करिए, तो शिव जी जो है हाँ शुरू करते हैं उनका मतलब है ना क्रिएशन,
तो शिव जी वही वाले हैं मतलब,
नहीं नहीं रुद्र रूप में यहाँ पे। तो उसके बाद शिव जी जब सृष्टि करते हैं तो वहाँ पे कहीं सारे वो डिमांड्स भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, और फिर जो है वो लोग आके डिस्टर्बेंस करते हैं ब्रह्मा जी को फिर ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरे को क्रिएशन अभी कंप्लीट करना है, मुझे फोकस करना वो आके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, शिव जी को बोलते हैं अभी चुपचाप आप बैठिए, अभी आपका काम नहीं है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं शिव जी का एक्चुअल क्रिएशन जब तब होता है जब जो संहार करना होता है, तो जब संहार होगा तो ये लोग आके सब डिस्टर्ब करके सब नष्ट करेंगे, तो इसलिए उस समय फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अभी ध्यान लगाइए, शिव जी को बोलिए कि आप ध्यान लगाइए और जब जरूरत होगा आपको फिर बताएंगे। तो फिर जो है शिव जी को उन्होंने कहा, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इसलिए शिव जी जो है ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है अभी काम नहीं है तो अभी हम भक्ति करते हैं, तो ध्यान लगाते हैं, और फिर जो है ब्रह्मा जी फिर से जो है सतगुण की और प्रजापति का उत्पन्न करते हैं,
दक्ष
दक्ष है ना, तो दक्ष तो एक प्रजापति और भी है, तो उसमें फिर 10 पुत्र का उत्पन्न करते हैं, उसमें से एक नारद जी है, तो अत्रि है, मरीचि है, ऐसे है कई सारे ऋषियों का उत्पन्न करते हैं,
ये सब तो मानस पुत्र होते हैं।
हाँ हाँ नहीं वो कोई मन से है, कोई है किसी अंग से है, किसी
नासिका से,
जगह से तो अलग अलग जगह से है ना, तो उत्पन्न होते हैं, नारद जी जो है उनकी चिंता से उत्पन्न हुए, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद ये जो है सारे उत्पन्न हुए, और फिर क्या हुआ, एक कन्या उत्पन्न हुई, नाम शायद बाप या कुछ है, और फिर जो है ब्रह्मा जी उस कन्या से हाँ जो है आकर्षित हुए,
तो
उनके नाम यहाँ पे शायद भागवतम में वाक्य कुछ ऐसे हैं, आप देख लीजिए कर लीजिए, तो उससे उनका माइंड में थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगा मटेरियल नेचर ना, मटेरियल वर्ल्ड तो अभी क्रिएट हो रही है ना, तो पहले तो हाँ ये सारे जो ओरिजिनल है उन्हीं से ही होगा। तो जैसे ही उत्पन्न हुए उनकी हृदय में, उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ एक्टिविटी किया नहीं, हृदय से जैसे उत्पन्न हुए तो वो सारे समझ गए थे, उन्हीं के जो पुत्र है मरीचि ये सब ऋषि है ना, सब समझ गए और फिर सब बोलने लगे ब्रह्मा जी को कि ये ठीक नहीं है, जो है बाकी लोग जो है आपसे सीखेंगे तो ये सही नहीं है। तो उनकी कुछ जैसे उन्होंने सुना तो ब्रह्मा जी को बहुत लज्जित महसूस हुआ और उन्होंने जो है सोचा कि मेरे जीवन में रहने का कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये शरीर त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने फिर ये शरीर को त्याग दिया और दूसरा शरीर धारण किया। तो ये जो शरीर उन्होंने त्याग दिया वो कोहरा बन गया, फॉग फॉग जैसे बन गया और फिर एक और एक शरीर उत्पन्न हुआ जो फिर फर्दर क्रिएशन। अब उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो चीज है जो अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, ये जो है ये बहुत इस मटेरियल एग्जिस्टेंस का बहुत डीप कनेक्शन है और सब व्यक्ति जो है जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में हम सब इससे क्या है तो इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो है इससे अफेक्टेड है, नहीं, पर ब्रह्मा जी इससे हमें समझ में आता है कि अगर ब्रह्मा जी का हृदय में ऐसे हो रहा हुआ तो हमारा क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है। तो हमें कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और इसलिए बताया कि शास्त्र में दिया हुआ है कि हाँ चाहे माँ हो चाहे सिस्टर हो चाहे डॉटर हो, हमें किसी के साथ भी जो है हमें क्लोजली निर्जन स्थान में नहीं बैठना चाहिए, क्लोज समझ गए। तो ये शास्त्र का विधि है। तो प्रभुपाद बता दें कि इसीलिए हमें स्पेशली इंटरमिंगलिंग जो है नहीं कि हमारा सेंसेस सो वीक, हमारा माइंड इज सो वीक, ठीक है। तो हमें केयरफुली जो खास करके जो डिवोटी हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में एम्बिशन रखते हैं कि हमें ये जन्म मृत्यु को पार करना है, तो केयरफुली हमें इस चीज को ओवरकम करना चाहिए, है ना। रिसेंटली एक डिवोटी मुझे फोन किया, बता रहे कि इज मैरिड, रिसेंटली वो मैरिड हुए पर दे हैव मैरिज लाइफ, दे हैव डिसाइडेड कि वो लोग अभी मैरिज लाइफ को 3 साल तक वो लोग नहीं करेंगे, देयर विल बी नो रिलेशन। सो दे ही वांट्स, लेकिन वो बोल रहे कि एक साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, मतलब बेसिकली 3 साल तक वो लोग और एडवांस होना चाहते हैं, सम हो एक डिवोटी का थॉट है, पर वो बोल रहे लेकिन एक साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। एक साथ इसलिए नहीं रहना चाहते हैं कि ऑल्दो दे हैव डिसाइडेड कि नहीं देयर विल बी नो रिलेशनशिप पर सेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है एक साथ एक रूम में रहने से हो सकता है कभी माइंड जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इसलिए दे वांट के आइदर ही वांट्स टू स्टे विद द डिवोटीज ओनली सेपरेटेड, मे बी ड्यूरिंग डे टाइम कुछ जो रिक्वायर्ड है वो सर्व किया है उससे, बट दे वांट टू बी। सो आई वाज जस्ट जब मैं सुन रहा था मुझे लग रहा था सो नॉलेजेबल, डिवोटी नॉलेजेबल जो जानते हैं ये साइंसेस कितना स्ट्रांग है हमारा, तो ब्रह्मचार्य ये जो है ये बहुत ही जो है मतलब अच्छा वो है, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ट्रेंड शुरू किया है और पहले भी थे है नारद मुनि, पर हम लोग का जो सोसाइटी में ऐसे बन गया है कि कोई सोचता ही नहीं है, सबको लगता है कि लाइफ मतलब ही है मैरिज लाइफ, इट्स कम्प्लीटली गलत भावना है कि लाइफ कितना अच्छे लाइफ होते हैं तो सोचते ही है। और सारे जो वाइटल एनर्जी है वो उसी में रहता है। तो और आप सबको पता है कि हम सब इस मेटेरियल वर्ल्ड में बाउंड किससे होते हैं, किसके शक्ल से होते हैं, इसी से होते हैं, सेक्स डिजायर की शक्ल से, शक्ल चेन से बंधे होते हैं, ठीक है। पर वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि इसको ओवरकम करना पॉसिबल है, पॉसिबल हाँ पॉसिबल है पॉसिबल है, हरि नाम से पॉसिबल। आगे जाके अभी मिलेगा कि जब कश्यप जी, जब दीति दीति आते हैं कश्यप जी के पास, तो इसी में आगे आएगा अभी आज की टॉपिक में ही। तो दीति आते हैं सिर्फ वो उस समय संध्या का समय, शाम के समय, और कश्यप जी को कश्यप को पूरा पता है, वो बताते हैं कि ये समय सही समय नहीं है, इस समय हमें नहीं करना है, आपको वेट करना है, प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। तो उसमें आता है कि दीति जो है वो नहीं कर पाते कंट्रोल, और फिर वो आके उनको जो है एक तरह से फोर्स करते हैं उनको कि नहीं मेरे से नहीं हो पाता, और फिर कश्यप मुनि जो है वो मान जाते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कश्यप वाज फुल्ली अवेयर कि ये नहीं करना है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस ये गलत है, पर फिर भी क्योंकि जस्ट दीति उनको रिक्वेस्ट किया है और एक तरह से वो किया, तो वो जो वीकनेस के कारण वो ये विक्टिम हो गए, मतलब वो एंगेज हो गए, और फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं बट जब हरिदास ठाकुर के केस में वो डेड ऑफ द नाइट में आए, इट वॉज मोर एल्यूरिंग, और वो कितने एल्यूर किया उनको, कितने फोर्स किया, बट हरिदास ठाकुर वाज एबल टू रेजिस्ट, हाँ कैसे, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द होलीनेस, सो ओनली बाय द पावर ऑफ द होलीनेस, इफ वी टेक शेल्टर ऑफ द होलीनेस, तभी ये जो फोर्स ग्रेट फोर्स है ये ऑफ सेक्स डिजायर ये somehow we can resist, or we may protect ours. Otherwise, this is the Krishna kya kehte hain Gita mein? This is the all devouring sinful enemy. Kaun sa? Kama esha, krodha esha, rajoguna, samudbhava, mahashana, mahapapma, vidhinam, iha vairinam. Vairinam means of shatru. महाशन ये सारे खत्म करने वाला, क्या क्या पाप नहीं कराता इस ये हमसे, क्या क्या पाप नहीं कराता इस पूरा मैटेरियल, आज की समाज में आप जितना भी देखो कितने बड़े बड़े जो सो कॉल्ड मुनि ऋषि बोल दो, जो अभी का भी सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, हर कोई इससे क्या हुआ है, विक्टिम हुआ है कि नहीं, रिसेंटली जितने भी बड़े बड़े कितना सक्सेस मिला उन लोग, आसान नहीं है ऑफकोर्स, उन्होंने भी काफी मेहनत किया होगा, काफी तपस्या किया होगा तभी तो इतने लोग फॉलो कर रहे थे उनको। काफी तपस्या किया होगा, इट्स नॉट कि वो शुरू से ही ऐसे ही थे, ऐसे नहीं है। तपस्या किए, काफी कुछ किए, लेकिन इस चीज को जाहिर नहीं करते। कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंस आए जिससे उनको इससे विक्टिम बन गया और उनकी सारी चीज खत्म हो गए, सारे फेम, सारे जो भी है उनकी सक्सेस था, जो भी प्रगति हुआ होगा, जो भी चीज हुआ होगा, जो भी उन्होंने कल्याण किया होगा लोगों को, जो भी पुण्य किया होगा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कौन जय कर सकता
तो पहले से ही होता हुआ आया है। पहले भी ऐसा हुआ करता था, पहले मतलब सत्योग सब
तो
कलयुग में तो स्वाभाविक है, यहाँ तो होना ही।
तो इसीलिए तो कृष्ण कह रहे हैं महाशन महापाप, तो इसीलिए आगे जाके कृष्ण क्या सॉल्यूशन देते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कर्व दिस एनिमी, सॉल्यूशन ये देते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इसको होने से पहले ही, हृदय में जगने से पहले ही इसको क्या करो, कर्व करो। पहले तो हम सबको केयरफुल, जैसे वो डिवोटी कह रहे थे कि अगर एक साथ रहेंगे तो हम कभी भी, तो वी शुड बी केयरफुल। इसलिए शास्त्र हमें इंजंक्शन देता है, गाइड करता है कि आप इंटीमेट सी है, जो है इंटीमेटली सॉलिटरी प्लेस में सिस्टर के साथ भी, डॉटर के साथ भी, या ग्रोन अप डॉटर के साथ भी, या मदर के साथ भी नहीं बैठना। क्यों दिया? तो वी शुड ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ट्राई टू ऑब्जर्व इट इन द ऑफिस में भी, बाहर में भी, बस में भी, कहीं भी कोई गर्ल है ऑपोजिट सेक्स से, शुड ट्राई कि यू शुड नॉट बी अफेक्टेड, कि इंटीमेटली हम टच ना करें, इंटीमेटली हम क्लोज ना जाएं, एक एक लिमिट की ज्यादा क्लोज ना जाएं हम। वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर ओन वीकनेसेस, आवर ओन लिमिटेशंस, एंड वी शुड ट्रेन आवर सेंसेस कि किस चीज को देखना है, किस चीज को नहीं देखना है। क्योंकि एक सिंपल सिंगल ग्लांस कैन टेक अवे ऑल आवर एफर्ट्स। सो अजामिल का एक ग्लांस जो है उनके ऊपर चला गया था एंड एवरीथिंग फिनिश्ड, है ना। सो इसीलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कृष्ण कह रहे हैं कि कर्व इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
जब हृदय में बैठ चुका है तब प्रभुजी ट्रेनिंग से तो ट्रेनिंग नहीं हुई ना हमारी,
तो ये सब ट्रेनिंग आपको इसलिए, तो डिवोटीज के साथ में है तो बेस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह से टेस्ट तभी होती है जब हम आउटसाइड में होते हैं,
अकेले होते हैं,
अकेले होते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन है तो जनरली। इसलिए हमें सीनियर डिवोटी सब बहुत प्रैक्टिकल है, कभी भी ऐसे अकेले सिचुएशन आएगा तो आप क्या करते हो, है ना। तो जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कोई एक आए थे उनकी डिसाइपल मिलने के लिए, एक माता जी डिसाइपल, है ना। तो वो तुरंत बोले कि किसी को बुला लिए महाराज ने, कोई डिसाइपल को, नॉर्मल डिसाइपल जो मेनली। तो माता जी ने कहा कि कुछ प्राइवेट बात करनी है, तो महाराज ने क्या बोला, देयर इज नो प्राइवेट टॉक्स, व्हाट एवर यू कैन टच for guru and disciple there is no private talk, so everything is Krishna, so you can tell whatever you want in front of him, you can tell. So this way protecting, even this monroe group ko lena hota interview, hai na, kabhi diksha ke samay kai mata ji ko bhi interview lena hota hai, guru ji kisi ko bitha dete hain saath, koi na kisi ko bitha dete hain, so agar nahi bithayenge koi kuch nahi bolne wala hai, पर अपना खुद की प्रोटेक्शन खुद को ही लेना चाहिए ना। सो वी ऑल्सो शुड बी केयरफुल इन दैट। आगे जाके आप लोग और सीनियर होंगे, हो सकता है बड़े बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी भी हो जाए, लेकिन दीज आर वेरी बेसिक थिंग, उसको हमें शुड ट्राई, क्योंकि एक भी थोड़ा सा हो जाएगा, ये आज की बात नहीं है, जिसे बताए सदियों से आ रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी का ऐसा हो सकता मतलब माइंड में आया, हम सब
सब कर भी हो सकता है, हमारे माइंड में आएगा तो हम तो
ठीक है. सो शुड बी वेरी डिटर्मिनेशन हमारे सेंसेस को, शुड बी वेरी इंटेलिजेंट आल्सो टू कल्प, इसलिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है.
कभी कभी आप बता रहे थे कि आप बेस में रहते हैं तो आपको माया कम गिरती है, लेकिन इसका कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी भी देखा जाता है. कभी कभी आप बेस में रहते हैं और मतलब आपको साधु संग सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन बट इट्स लाइक वो हनी जार के अंदर है और वो हनी भी बाहर है, तो बेस में भी कभी कभी आपको माया घेर लेती
है. वो तो होता ही है, वो तो हो ही सकता है, पर यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट अगर आप सही है तो आपको आपको वो कॉन्शियसनेस हमेशा रहता है कि मैं इस रूम में हूँ, मैं यहाँ पे सारे डिवोटी से घिरा हूँ, मैं कुछ गलत कार्य कर नहीं सकता. यू कैनॉट ब्रिंग ए गर्ल हियर, ए गर्ल कैनॉट कम एंड मीट यू इन दिस वे फॉर एनी एक्सक्यूज. एटलीस्ट ये रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, एंड फॉर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग यू विल बी कॉन्शियस कि गर्ल जो है ऑल डिवोटीज हैं, हाउ कैन आई डू दैट. जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी का जैसे थॉट आया, मरीचि ऋषि सबने बोला आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस. सिमिलरली अगर आपकी बातचीत सही नहीं ला रहा है, आप किसी से और बातचीत कर रहे हो फोन उन पे, तो ड्यूटी पूछे क्या हो रहा है आपका, ड्यूटी पक्की लगे है ना. तो एक तरह से ये है, जो मेटेरियलिस्टिक लोग है वो सोचेंगे ये तो ऑब्स्टिकल है, पर डिवोटी जानते हैं कि दिस इज प्रोटेक्शन. पर अगर आप अकेले रूम में रहोगे, दे हैव नो काइंड ऑफ लिमिटेशन, आप कोई भी आपके रूम में आ सकता है, आप किसी को इनवाइट कर सकते हो, यू कैन बी यू कैन गो एनीवेयर. ठीक है. तो
जैसे कि जैसे अभी ये जो हम ये डिजायर्स हैं, ये भक्ति को पूरा नाश कर देती है ना, पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, कृष्ण हम दूर चले जाते हैं बहुत.
बिल्कुल बिल्कुल.
तो प्रभु जी इसका आप सोल्यूशन से बताया कि डिवोटी एसोसिएशन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है ना उतना ज्यादा कम चांसेस है
डिवोटी एसोसिएशन प्लस जैसे हरिनाम डिस्कस किया, क्योंकि हरिनाम से हमारे लास्ट दूर होगी. डिवोटी से क्या होगा, हमारे इमीडिएट प्रोटेक्शन हो रही है. कि जो जो आप बोल रहे हो ना कि लस्ट डेवलप हो भी गया तो भी हम कुछ गलत कर नहीं पाए, दैट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर विल बी देयर टू प्रोटेक्ट अस. पर अंदर लस्ट को दूर करना ही पड़ेगा ना, वो सिर्फ हरि नाम से ही हमारे दूर होगी कि अंदर की डिजायर, और वो जब दूर हो जाएगा तो फिर आप डिवोटी के एसोसिएशन के बाहर भी रहोगे, देन आल्सो यू विल नॉट
बी. समटाइम्स इट हैपेंस प्रभु जी कि हम प्रीचिंग भी करते हैं ना, कि लेक्चर देते हैं, बोलते भी कि ये ना बड़ी गंदी चीज है सेंस ग्रेटिफिकेशन. अभी कुछ लगातार लेक्चर चल रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर है, प्रहलाद महाराज जी बता लेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए. तो कभी कभी हमारे मन में आ जाते हैं कि हम कॉलेज में जाते हैं तो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है डिजायर्स प्रभु जी कि बाहर तो बहुत ही गंदा हाल हो चुका है. कॉलेज में जाते हैं ना कि वहाँ पे फेस्ट हो रहे हैं, फैशन शो हो रहे हैं खुले में, बहुत गंदा हाल है बहुत ज्यादा.
इतने जन्मों से करते आ रहे हैं कि एकदम जरा सा वो मौका मिलता है तो वो पुराना हो,
तो नजरे भी कंट्रोल में नहीं है, नजरे जाती है तो एक ना बहुत शर्म आती है अपने अंदर कि हम ना प्रीचिंग कर रहे हैं एंड हम ऐसा भी कर रहे हैं कि हमारी नजर क्यों जा रही बार बार, वी आर स्ट्रगलिंग वेरी मच विद दिस.
हाँ तो ये तो फिर आपको और ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए कि मैं ट्रू डिवोटी हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे एंजॉय तो नहीं कर रहा हूँ. एक चीज है जिसे आपका हाथ में नहीं है, जैसे बाहर पोस्टर लगा हुआ है आपके हाथ में नहीं है, है ना, बट यू हैव टू ऑलवेज सी कि इंटरनली हम कितना प्योर है, कि हमें उस पोस्टर को देखने की मन नहीं कर रहा है. अगर मन कर रहा है अंदर, इतना तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा अंदर मन कर रहा है कि नहीं देखने का. अगर मन कर रहा है तो आई हैव लॉन्ग वे टू गो, हरिनाम और अच्छा से करना है.
तो प्रूव क्यों ना हम ऐसी चीज के लिए एक्सपायर करें जहां हमें मौका ही ना मिले इस चीज का,
नहीं तो ये लेकिन कोई उपाय नहीं है. ऑफ कोर्स तो जैसे कहा कि डिवोटी एसोसिएशन में आपको काफी हद तक एक प्रोटेक्शन मिल जाता है जहां पे मौका ही नहीं है. हाँ, टेम्पल में या डिवोटीज के बेस में आप सेवा में इतना ज्यादा बिजी हो कि आपको नहीं मिल रहा, पर एक्चुअली जब तक अल्टीमेट सॉल्यूशन तो है हृदय से निकालना, उसको प्यूरिफाई करना, क्योंकि उसको अगर नहीं करेंगे तो जगह ऐसे इस मेटेरियल वर्ल्ड में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे लस्ट नहीं है. जैसे सोबरी ऋषि जो है वो पानी का नीचे चले गए थे लेकिन वहां पे भी जाकर उनको मिल गया. तो ये जो है एक तरह से टेम्पररी प्रोटेक्शन हमें मिलता है, पर इस समय इस प्रोटेक्शन में रहते रहते हमें ये समझना है कि दिस इज नॉट अल्टीमेट, अल्टीमेट हमारा प्यूरिफिकेशन है जब तक ये डिजायर खत्म हो जाए पूरा तरह से, ठीक है। तो ये हरि नाम से आएगा और नेटिव स्ट्रिक्ट, तो आप लोग ब्रह्मचारी जो है, आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी बनिए, यू शुड सेट एग्जांपल, है ना। तो ठीक है, उसके आगे ब्रह्मा जी, फिर क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया, फिर आगे ब्रह्मा जी क्या करते हैं और एक्सपांड करते हैं, फिर दो एक पुरुष एक स्त्री उत्पन्न होते हैं, वह स्वयंभू मनु उत्पन्न होते हैं और यह सुतपा, फिर आगे जाके और प्रजापति उत्पन्न होते हैं और जो है कन्या और डिवोटीज उत्पन्न होते हैं और फिर आगे ये चलता है, ठीक है, क्रिएशन। और फिर बताते हैं कि उस दौरान फिर देखते हैं अचानक से क्या हो रहा है, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है वो पानी में डूब गया, जो उन्होंने अभी बनाने ही वाले हैं, बना ही रहे थे, और जो एक तरह से मतलब लिविंग एंटिटीज जब क्रिएट होके आने ही वाले पृथ्वी लोक में, तो देखिए पृथ्वी लोक ही नहीं है अभी, पृथ्वी लोक जो क्रिएट हुआ था वो समहाउ कहाँ चले गए, कहाँ, पानी में, तो कौन सा पानी, गर्भोदक सागर के नीचे चले गए। फिर जो है ब्रह्मा जी प्रे किया, आप पृथ्वी लोक आप कैसे होगा, आप कृष्ण को प्रार्थना करते रहे, और फिर जो है भगवान जो है आए प्रकट हुए, कैसे, ब्रह्मा जी के नाक से, बहुत सुंदर रूप से हैं बड़ा है भगवान, और देखते 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 वो विशाल रूप धारण किया, और फिर वो जो है वो गए और फिर वहां से गर्भोदक से जो है वो पृथ्वी को लेके आए और रखा अपनी ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं कि ये जो बड़ा भगवान का अवतार हुआ और हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया तो कैसे हुआ, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो फिर वो बताए कि हिरण्याक्षिपु कैसे जो है वो दीति का प्रेगनेंसी के बारे में वर्णन किए, तो जो हम थोड़ा बहुत डिस्कस किया अभी, और फिर जो है बता रहे, फिर वो ये दो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कैसे उनका पतन हुआ वैकुंठ से, तो फिर वर्णन किए जो ये जो चार कुमार जब जन्म हुए थे तो वो तो इधर रहे नहीं, तो वो तो लिबरेटेड थे, कहीं भी घूम रहे थे इधर उधर इधर उधर, तो दे आर सो लिबरेटेड कि वो कहीं भी जा सकते थे, वो कहां चले गए, वैकुंठ में चले गए, और वहां पे सात द्वार होते हैं, तो वो जो है इतने हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि दे आर फुल फ्री फ्रॉम डुप्लीसिटी, उनके लिए अपना और दूसरे का कुछ है ही नहीं, ये भी हमारा ही है, कृष्ण का है हमारा है, हमारा है आपका है, आपका हमारा है, बस। तो सोचे ही नहीं कि परमिशन की भी कुछ जरूरत है करके, सीधा चले गए, बोले छह गेट तो पार हो गए, उनको डेकोरेशन वेकोरेशन क्या था क्या नहीं था उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई था भी नहीं था, कितना डेकोरेटेड था वो, तो भगवान वो सीधा भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए, और साथ में जब द्वार है तो वहां पे अटक गया, उनको रोक लिया, तो उनको जो है एक तरह से क्रोध आया इस समय कि कैसे ये वैकुंठ में आप लोग भेदभाव कर रहे हो, वैकुंठ में कि वो देख सकता है वो नहीं देख सकता है, कैसे आप वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं है। तो वहां पे फिर प्रभुपाद शास्त्र में बताते हैं कि उनकी जो क्रोध है, कोई बोल सकता है कि ये क्रोध क्यों किया, लिबरेटेड सोल है, तो बोलते ये जो क्रोध है ये मेटेरियल क्रोध नहीं था, ये जो है ये भगवान से मिलने का तीव्र इच्छा की क्रोध है, ये स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्रोध होते हैं, पर वो जो है वो भगवान को प्रिय होते हैं, वो क्रोध भगवान के लिए क्रोध कर, भगवान से कितना अट्रैक्शन है उसके कारण क्रोध हो रही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण है, जिसे एंगर ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो अभी जो किया था वो है अविद्या है कि हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं हो पा रहा इसलिए एंगर हो रही है, पर वो क्या है, वो कृष्ण के प्रति अटैचमेंट के कारण कृष्ण की सर्विस नहीं कर पा रहे या कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए अहंकार होना है जो भी रोक रहा है हमें, वो जो है वो स्पिरिचुअल एंगल है और वो कृष्ण को प्रसन्नता देती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है ना, जब वो श्रीवास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे है ना, और महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, तो उस समय राजा प्रताप रुद्र आए थे देखने के लिए, और उनकी शायद जो असिस्टेंट थे वो थोड़ा इधर कर रहे थे, साइड हो जाओ है ना, और बार बार श्रीवास ठाकुर की उसमें आ रहे थे श्रीवास एक चापर मारा चापर। तो वो क्या था, जस्ट ड्यू टू लव फॉर कृष्ण, प्रेम के कारण उनके ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे, कोई भी हो चाहे राजा हो चाहे कुछ भी हो। तो दैट एंगर इज नॉट मेटेरियल एंगर, ठीक है। तो उन्होंने फिर वहां पे एक तरह से एंगर आने से कर दिया कि आपको यहाँ पे रहने की योग्य नहीं है, भेदभाव करना है तो आप मेटेरियल वर्ल्ड में जाओ वहां पे। और देखते देखते फिर जो है उस समय भगवान को पता चल गया, और फिर भगवान वहां पे आए, क्या हो रहा है, कोई स्पेशल ड्यूटी आए हैं यहाँ पे है ना। और जैसे ही भगवान आए, भगवान की जब वहाँ पे चरण की तुलसी की सुगंध जैसे उनको मिले, तो इम्पर्सनल थे वो एकदम से जो है डिवोटी होगा। और फिर उनकी स्थिति, फिर भगवान उनको देखने के लिए फिर वहां तक आए, तो वह भी बताते कि जो ऐसे होता है कि भक्तों के हृदय में अगर बहुत ज्यादा इच्छा है तो अगर भगवान तक नहीं भी पहुंच पाते, भगवान आ जाते वहां तक। तो जैसे वो लोग नहीं अंदर आ पा रहे थे, लेकिन भगवान आ गए बाहर देखने के। प्रभुपाद बताते हैं हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में अंदर नहीं जाते थे क्योंकि अलाउड नहीं थे। तो जगन्नाथ जी जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में हर रोज आते थे उनको दर्शन देने के लिए, है ना हरिदास। तो मेन चीज जो है वो और जो अंदर की जो है प्रेम है, डिजायर है भगवान से मिलने के लिए, भगवान को सर्व करने के, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसी को कल्टीवेट करना है हमको। डजंट मैटर कि हम कितना दूर में कितना पास में, जैसे कोई भी जन्माष्टमी होता है या कुछ होता है, हमें जाना सामने। एक डिवोटी जो रियली ये कौन करता है, जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, जिनको पूरा नॉलेज है वो इसमें नहीं जाते, वो सोचते इससे राधर मेरा कॉन्शियसनेस और डिस्टर्ब होंगे, हटाऊंगा वो कुछ बोलेगा फिर मैं दूर से क्या दिख रहा है स्क्रीन में दिख रहा है जो नो उसकी मेरा अंदर की क्या चीज है, क्या कितना मैं देखने के लिए मैं अंदर में जो है उत्सुक। जो राधा रमन जी ड्यूटी कैसे मैनिफेस्ट हुआ जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है नहीं। और फिर भगवान आए, भगवान दर्शन किए और फिर दिए दर्शन दिए, और भगवान ने कहा, जब भगवान से मिले वो तो वो चार कुमार बोल रहे थे कि शायद हमसे गलती हो गया, शायद हमने ज्यादा ही गुस्सा हो गया है ना उन लोगों को, तो अभी आप हमें जो सजा देना चाहते हैं वो दे सकते, या हम दोनों में से जिनको भी जो करना है आप आ गए तो आप ही कर लेंगे जो भी करना है ना। तो उस समय भगवान जो है आके चार कुमार का बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि आप जो है ब्राह्मण है, आप जैसे डिवोटीज है ना, मेरा गलती हो गया। वो बोलते कि मेरे सर्वेंट जो है उन्होंने आपको ऑफेंस किया, दैट मीन्स मेरा आपके प्रति ऑफेंस हो गया, भगवान इस प्रकार ऐसा कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा मर्सीफुल हो जा, परमिशन दो, तो मैं चाहता हूं ये लोग सजा भी ले लेकिन जल्दी आ जाए वापस, ज्यादा समय के लिए ना जाए भी तो आपके कर्ज भी हुआ, लेकिन आप थोड़ा परमिशन दे दो, थोड़ा कृपा कर लो कि वो जल्दी से मेरे पास वापस आ जाए। तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि कभी कभी ऑफेंस हो जाता है, वैकुंठ में भी ऑफेंस हो जाता है, भगवान के प्रति कभी नहीं होता है कि एक दूसरे कभी कभी बाय चांस, लेकिन बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में उसमें फर्क यही है कि वहां पे जब ऑफेंस होता है पहले तो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, कभी कभी स्पेशल ओकेशन में बाय चांस हो जाता है, और हो भी जाता है तो भगवान वहां पे आके उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं, तो भगवान वहां पे आके उनको एक तरह से बोला है कि जल्दी आ जाएंगे, तो आप कृपा करके ये परमिशन दे दो कि आपने कर्ज दिया पर मैं आपके कर्ज से इतना थोड़ा सा मिन्ती कर रहा हूँ कि आप उनको थोड़ा इतना दे दो। तो उसमें फिर चार कुमार जो है भगवान से रिप्लाई में कहते हैं हे कृष्ण, हे भगवान, सब कुछ आपका है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आप हमें हमसे परमिशन मांग रहे हैं, तो ये हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, है ना। तो उसमें वो फिर बता रहे हैं कि भगवान की स्तुति करना है। तो उसमें हमें देख सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी भगवान जैसे अपनी डिवोटीज को अपने से भी ज्यादा श्रेष्ठ बना देते हैं, ग्लोरीफाई कर देते हैं, तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए, डिवोटी क्या सोचते हैं जनरली, कभी भगवान भी उनको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि आप बहुत बड़े हो, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो सोच लेते हैं सच सचमुच हाँ मैं बड़ा हूँ बहुत, लेकिन जो एक्चुअल ज्ञानी है वो जानता है कि नहीं मेरा स्थिति क्या है, और वो चीज चाहे भगवान भी बोल दें तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा उनकी स्थिति। उसी तरह कभी स्पिरिचुअल मास्टर अपने डिसाइपल को बोल देता है कि आपने थैंक यू, आप बहुत सेवा किया, आपने बहुत कुछ किया, आपने ये किया वो किया, लेकिन जो डिसाइपल एक्चुअली नॉलेजेबल है वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है हृदय से, हमेशा सोचते जो भी होता है वो स्पिरिचुअल मास्टर की मर्सी से है, और ये चीज आज रहेगा कल हो सकता कुछ भी नहीं है, जिसे वो बता रहे लेक्चर आज कल हो सकता जीरो हो जाएगा, जो रियली नॉलेजेबल है वो कभी ड्रीम में भी गलती से भी नहीं सोचता है कि हाँ स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे मैं बहुत सेवा किया तो मतलब मैं बहुत अच्छा, या स्पिरिचुअल मास्टर को मेरा नो नीड है। तो इस टाइप की जो चीज है ना वो कॉन्टेमिनेशन आते हैं, आ जाता है कभी कभी स्पिरिचुअल मास्टर अपनी ह्यूमिलिटी के कारण बोलते हैं कि आप लोगों ने किया, आप लोग बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा से कर रहे हो, समटाइम हम सच में सोचने लगते हैं हम लोग कर रहे हैं तो एक बार शायद एक लेक्चर में सुन रहा था गौरगोविंद महाराज के लेक्चर में, किसी ने उनके डिसाइपल ने बोल रहे थे कि महाराज आपने बहुत कुछ किया है ना, इस तरह से जो भी है प्रभुपाद ने किया, हाँ नहीं महाराज आपने भी तो थोड़ा हो डांटने लगे एकदम से। Really, मतलब how much they are fully conscious कि जो भी है तो मस्ती से हम लोग कुछ नहीं है, वो तभी पॉसिबल है जो उस कॉन्शियसनेस, लेकिन हम लोग क्या है किन कंडीशन हो ले तो हमें माइंड में आ जाता है, और जब सब लोग बोलने लगते हैं या गुरु बोलने लगते हैं कि हाँ तो वो हमें कॉन्टेमिनेट कर देता है, और हमारा जो भी रिजल्ट एक्चुअली मिलने वाला था कृष्ण प्रेम वो भी मिलता नहीं है, हम सोचते हम उससे डिप्राइव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चार कुमार बहुत केयरफुल है, केयरफुली वो लोग उस चीज को अवॉइड कर दी कि कृष्ण हम सब डिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र हैं, आप सब कुछ, ये क्या बोल रहे हैं आप, यू आर डूइंग एवरीथिंग। तो उससे फिर वो लोग जैसे ही, तो उस समय जब दीति का कुंभ में जैसे वो लोग वहां से वैकुंठ से वो लोग पतन हुए मतलब नीचे आए, वो तुरंत दीति की गर्भ में प्रवेश किए, ठीक है ओके ठीक है। तो आज टाइम हो गया तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़िएगा। और अच्छा मैं उसको रीडिंग असाइनमेंट आज बनाता हूँ, अभी जाके रात तक आप लोगों को मेल कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट वगैरह आप लोग दे दीजिए, फिर नहीं दिया है तो अगली बार दे दीजिए। अगली बार कर देते हैं, ठीक है। ओके, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद की।